ओम शांति। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, इस भूमि पर आप पहुंचे हैं तो आप सभी का उस अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को यथार्थ रूप से जानना जरूरी है। आप सबको पता हो कि हम सबके तीन पिता है, पता है? एक है शरीर के पिता, लौकिक पिता जिसको हम कहते हैं, जो हरेक के अपने अपने हैं, हरेक को अपने लौकिक पिता है जिससे हमें ये शरीर प्राप्त होता है। दूसरा है, आज सुबह जिसका परिचय आपने प्राप्त किया वो है हम आत्माओं का पारलौकिक पिता, जो इस लोक से पर परलोक में रहते हैं, जिसको हम परम पिता सुप्रीम फादर कहते हैं। उस परम पिता शिव बाबा का परिचय आपने प्राप्त किया और अभी हम जानेंगे तीसरे पिता अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा, फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव जाति का आदि पिता, जिसको ब्रह्मा आदम एडम आदिनाथ आदि देव के रूप में हम सब पूजते रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सर्जन किया, तो वास्तव में सृष्टि का सर्जन माना क्या? सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, क्योंकि ये सृष्टि प्रकृति और पुरुष की बनी हुई है। प्रकृति मीन्स पांच तत्व जिसका ये शरीर बनता है, और पुरुष मीन्स चैतन्य शक्ति आत्मा। तो आत्मा जब शरीर धारण करती है तब ये खेल कर सकती है, पार्ट प्ले कर सकती है इस वर्ल्ड ड्रामा में। इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति पुरुष का बना हुआ ये खेल है, और जब ये खेल कलयुग के अंत में बिगड़ जाता है तो परमात्मा सृष्टि पर आते हैं उसे पुनः ठीक करने के लिए। इसलिए भगवान के लिए हम कहते हैं कि वे बिगड़ी को बनाने वाले हैं। आज संसार बिगड़ गया है, उसको कलयुग कहते हैं। परमात्मा आकर उसको पुनः बनाते हैं, मीन्स उससे अच्छा करते हैं, सत्य बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, जिसको हम सतयुग कहते हैं। तो परमात्मा जिस साकार माध्यम द्वारा, क्योंकि वो तो निराकार है, जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, और हम मनुष्यात्माओं को ज्ञान देना है, ज्ञान से परिवर्तन करना है, तो जरूर मानव के माध्यम से ज्ञान देंगे तब तो हम मनुष्यात्माएं समझेंगे, और मनुष्यात्माएं समझेंगी स्वयं का परिवर्तन करेगी, स्वयं का शुद्धिकरण करेगी, तो ऑटोमेटिक पशु पंछी प्रकृति उसको फॉलो करेगी और ये संसार बदल जाएगा। तो भगवान सर्वप्रथम जिस साधारण मानव तन में प्रवेश करते हैं उस साधारण मनुष्य को ही पहले ज्ञान देते हैं, उसको योग सिखाते हैं और उनके संस्कारों का परिवर्तन करते हैं। जब उसमें पूर्ण अलौकिकता आती है तो उसे अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं और उसे निमित्त बनाते हैं। वो अपने तन मन धन से समर्पित होते हैं और विश्व की आत्माओं को परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। तो परमात्मा जिस साकार माध्यम द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य आरंभ करते हैं उस माध्यम को कर्तव्यवाचक नाम दिया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। जैसे आज से 37 वर्ष पूर्व मैं गीता बहन थी, इस ईश्वरीय ज्ञान को अपनाने के बाद जीवन में धारण करने के बाद अब हम ब्रह्मा कुमारी गीता बहन कही जाती हैं। इसी प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा एक साधारण मानव थे। क्या थे, कैसे थे, वो दादी अपना आंखों देखा पूरा इतिहास हमें बताएगी। इसी ब्रह्मा का यादगार शास्त्रों में हम चतुर्मुखी ब्रह्मा सहस्त्र भुजाधारी ब्रह्मा दिखाते हैं। ब्रह्मा के चार मुख दिखाते हैं और सहस्त्र भुजा दिखाते हैं। तो ये विवेक से सोचने की बात है कि ब्रह्मा कोई चार मुख वाला नहीं हो सकता है, सहस्त्र भुजा वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। ये सिंबॉलिक चित्र है, एक प्रतीक रूप चित्र दिखाया गया है। ऐसे कोई अष्ट भुजा वाले, चार भुजा वाले कोई देवता नहीं हो सकते हैं। वास्तव में ये सिंबॉलिक चित्र है। जैसे हम अंदर के दिव्य गुणों को चित्र में कैसे दिखाते, व्यक्ति पावरफुल है, समर्थ है, तो अष्ट भुजाधारी देवियां शक्तियां हम दिखाते हैं। तो कोई आठ हाथ वाली, कोई शस्त्र ली हुई देवियां नहीं थी, लेकिन ये उनकी आत्म शक्तियां थी जिससे वे आसुरी संस्कारों को खत्म करती थी। हम गायन करते हैं ना कि देवियों ने असुरों का संहार किया, उनको अष्ट भुजाधारी अस्त्र शस्त्र धारी बताते हैं और हम कहते हैं कि देवियों ने असुरों का संहार किया। वास्तव में देवियां, जगत माताएं, शिव शक्तियां कोई संहार का कार्य नहीं करती। आज कलयुग के अंत में गांधी जी भी कहते थे कि पापी को नहीं मारना है, पाप को मारना है। तो असुरों को मारने की बात नहीं है, आसुरी संस्कारों को खत्म करने की बात है। तो जिन माताओं बहनों ने शिव से योग लगाकर स्वयं में आत्म शक्तियां धारण की, दिव्य गुणों के अस्त्र शस्त्र धारण किए और उन्होंने अपने दिव्य गुण आत्म शक्ति से अपने आसुरी संस्कार खत्म किए, दूसरों के आसुरी संस्कार भी खत्म किए, उसके लिए हम शास्त्रों में गायन करते हैं कि देवियों ने असुरों का संहार किया। वास्तव में आसुरी संस्कार का संहार किया, क्योंकि असुर कोई अलग योनि के प्राणी नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि देवताएं आकाश में रहते हैं, असुर पाताल में रहते हैं और हम इस मृत्यु लोक के मानवी है। लेकिन वास्तव में देवताएं कोई आकाश में नहीं रहते हैं, वो कोई काल्पनिक नहीं है। असुर कोई पाताल में नहीं रहते। असुर माना हम समझते हैं कोई भयानक आंख वाले, दांत वाले, सिंग वाले, वास्तव में अंदर के आसुरी संस्कार अंदर के विकार बुराई चित्र में दिखानी हो तो कैसे दिखाएं? मान लो एक व्यक्ति के अंदर बहुत गुस्सा है, वो चित्र में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? बड़ी बड़ी आंख दिखाएंगे, लाल लाल आंख दिखाएंगे ना। तो वास्तव में असुर माना आसुरी संस्कार वाली व्यक्ति को असुर कहेंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश जब इंसान होता है तो कैसा दिखता है? जब हम क्रोध करते हैं, अभिमान दिखाते हैं, उस समय कभी आपने आईने में अपना चेहरा देखा है? कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? असुर जैसा ही दिखता है ना। तो असुर कोई और नहीं, कलयुग के अंत में विकार बुराई के वश जब हम हो जाते हैं तो हम ही असुर हो जाते हैं। और दुनिया नरक बन जाती है, कलयुग हो जाता है। और हम ही जब इन विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, बुराइयों को खत्म करते हैं, दिव्य गुण जीवन में लाते हैं, पवित्र बनते हैं, तो हम ही देवता कहे जाते हैं। इसलिए देवी देवताओं को हमारे जैसा मानव तनधारी दिखाते हैं, लेकिन उनके नैनों में जो निर्विकारिता है, निर्दोषता है, पवित्रता है, उसके चेहरे पर जो संतुष्टता प्रसन्नता है, उसके व्यक्तित्व में जो अंतर्मुखता है, वो दैवी गुण हमें धारण करने हैं तो हम भी देवता बन सकते हैं। कभी आप सोचते हैं कि है वो भी हमारे जैसे ही, दो हाथ दो पांव दो आंख कान वाले मानव शरीरधारी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री राम सीता श्री राधे कृष्ण है, वो भी गृहस्थी संबंध में जुड़े हुए, लेकिन वो पूजनीय है। क्यों? हम पुजारी हैं क्यों? कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो वो पूजन योग्य है, वंदन योग्य है? और क्या हमने गंवा दिया जो हम पुजारी बन गए? वो है हमारा आंतरिक शुद्ध चरित्र, अच्छे गुण, योग्यताएं, है ना। तो जब दिव्य गुणों से संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी है, तो हम ही देवता गाए जाते हैं। और जन्म लेते लेते समय और प्रकृति के संसर्ग में आते आते कलयुग के अंत जब वो पवित्रता और दिव्य गुण नाम शेष हो जाते हैं, उसके स्थान पर विकार बुराई अवगुण आ जाते हैं, तो हम असुर बन जाते हैं। तो परमात्मा आकर के फिर से हमारे जैसे ही साधारण मानव तन में प्रवेश करते हैं, उसे कर्तव्यवाचक नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। उनके मुख से वो सत्य ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को जो सुनते हैं समझते हैं और आचरण में लाने का पुरुषार्थ करते हैं, उसे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है, है ना। एक सेंस में सभी मनुष्य ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा फादर ऑफ ह्यूमैनिटी है, इसलिए ब्रह्मा सृष्टि का सर्जन करते हैं। माना कोई पृथ्वी नहीं बनाते हैं, सूर्य चांद नहीं बनाते, एक एक मानव शरीर नहीं बनाते, लेकिन वास्तव में आत्मा में गुणों का स्थापन करते हैं, आत्मा में परिवर्तन लाते हैं, उसमें संस्कार अच्छे धारण कराते हैं, जिसको नया जन्म कहते हैं, है ना। जब कोई व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत ऐसी खराब व्यक्ति अचानक बदल जाती है, अच्छी बन जाती है, तो हम कहते हैं ना भाई ये तो जैसे कि उसका नया जन्म हो गया। तो जब हम जीते जी ज्ञान और योग की शक्ति से अपने बुरे संस्कारों को बदल कर अच्छे संस्कार धारण करते हैं, तो जैसे कि ये हमारा नया जन्म हुआ, अलौकिक जन्म हुआ, ब्राह्मण जन्म हुआ, इसलिए उसको ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, दूसरा जन्म। एक शरीर से जन्म और एक है संस्कार परिवर्तन का जन्म। तो शरीर की ज्ञाति से ब्राह्मण बनने की बात नहीं है, है ना। कर्म से आज हम सभी शूद्र बन गए। शरीर की ज्ञाति से भले कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, लेकिन संस्कार और चलन से हरेक आत्मा शूद्र बन गई है। तो जब संस्कार शुद्ध करते हैं तो हम संस्कार से ब्राह्मण बनते। ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा की मुख रचना, सच्चे ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण, संस्कार से ब्राह्मण। तो यहां जो दो चित्र आप देख रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इस विश्वविद्यालय का फाउंडर मीडियम, जिसका पूर्व नाम दादा लेखराज था और वे हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, तो आदरणीय मनोहर इंदिरा दादी जी ज्ञान सरोवर एकेडमी की डायरेक्टर हैं और महिला प्रभाग की चेयरपर्सन हैं, और 1937 से समर्पित है। दादी 14 वर्ष की आयु में आए थे, आज 69 वर्ष के बाद दादी भी अब 83 वर्ष के हो गए। तो मनोहर दादी जी का ये सौभाग्य था कि वो बाबा के समीप ही रहते थे, तो ज्ञान से पहले भी ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखा, फिर ज्ञान में आने के बाद जो उसके जीवन में परिवर्तन आया वो भी देखा, और फिर तो खुद ही समर्पित होकर बाबा के कार्य में साथी बन गई। तो दादी अपना आंखों देखा अनुभव का जो इतिहास है वो संक्षिप्त में आप सबको बताएगी। और बाबा के साथ मम्मा, ये मातेश्वरी जगदम्बा का चित्र है, तो वो कुमारी थी, बाबा तो गृहस्थी थे, मैरिड थे, बचरवाल थे और समर्पित हुए, जीवन बदला। लेकिन ये जब विद्यालय में आए 16 वर्ष की आयु के कुमारी थे, तो ये ब्रह्मा की मुख पुत्री है, लौकिक कोई रिलेशन नहीं, कुमारी थी, लेकिन नंबर वन पुरुषार्थी थी। शुरू से ही मम्मा का व्यक्तित्व ऐसा दिव्य था जैसे बनी बनाई कोई देवी हो। और इस ज्ञान और योग के बाद मम्मा को बाबा ने निमित्त बनाया समर्पित बहनों की संभाल के लिए, और इसलिए उनको यज्ञ माता मम्मा कहते थे, जबकि वो कुमारी थी लेकिन गुणों से जगत माता थी, ज्ञान में प्रवीण थी, इसलिए हम उसको ज्ञान सरस्वती जगदम्बा, क्योंकि दिल की विशाल पूरे यज्ञ को शुरू में चलाने वाली और इन सब दादियों को तैयार करने वाली, तो वो है मातेश्वरी मम्मा, जिसका जीवन एक एग्जाम्पल। शिव बाबा ने तो ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने जीवन में धारण करके बताया, फर्स्ट एग्जाम्पल बनी, और मम्मा प्रैक्टिकल में सारी व्यवस्था और अपने लाइफ से सबको चलाया प्रैक्टिकल में। तो ये दोनों नंबर वन इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कहो, हमारे जगत माता पिता कहो, यज्ञ माता पिता कहो, और उनके लाइफ एग्जाम्पल है कि ये अगर बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। एक इंसान अपने निश्चय और समर्पणता से भगवान की आज्ञा पर चलकर अपने को ये महान बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। हम भी बना सकते हैं और आज लाखों भाई बहने तैयार हुए हैं जो अपने जीवन को ऐसा दिव्य बना रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कोई हम ब्रह्मा को भगवान नहीं कहते, ब्रह्मा को गुरु नहीं कहते हैं, ब्रह्मा का ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान न ब्रह्मा का है न ब्रह्मा कुमारी का है, ज्ञान देने वाला वो ही परमात्मा शिव है, जिस कल्याणकारी ज्योति बिंदु परमात्मा को सभी विश्व के धर्म की आत्माएं मानती हैं। वो परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी जगदम्बा द्वारा इस यज्ञ को प्रारंभ किया और आज ये स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। उसी की यादगार कार्य आध्यात्मिक है, प्रैक्टिकल में सारा आध्यात्मिक कार्य चला, पुरुषार्थ चला, पर उसका यादगार जो भक्ति में बना वो स्थूल और बाह्य रूप से बना। इसलिए सहस्त्र भुजाधारी, अनेक भुजाधारी, अष्ट भुजाधारी, चतुर्भुज करके देवी देवताओं के चित्रों में और प्रतिमाओं में वो चीज दिखाई गई। बात आंतरिक है, आध्यात्मिक है, सूक्ष्म है। जैसे शास्त्रों में कहते हैं कि देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ, अब अगर देवताएं भी युद्ध करें फिर तो उसको हम क्यों माने, है ना। आज कोई लड़ाई झगड़ा करे, मारा मारी करे, युद्ध करे, तो हम एक सामान्य विवेक वाले इंसान भी उसको अच्छा नहीं समझते हैं और हम कहेंगे कि भाई लड़ो नहीं, शांति से रहो। तो क्या देवताओं ने युद्ध किया? तो वास्तव में इसका अर्थ क्या, मन में जो अच्छी और बुरी वृत्ति का युद्ध चलता है, क्योंकि परमात्मा आकर के जब ज्ञान देते हैं तो हम कलियुगी पतित मनुष्य है, हमें पावन बनने का वो ज्ञान देते, है ना। एक पेशेंट को डॉक्टर दवाई देगा, परहेज बताएगा ना, तो परमात्मा भी जब संसार में आते हैं, हम मनुष्यात्माएं तमो प्रधान होती है, पतित होती है, वो हमें सत्य ज्ञान देते, और वो सत्य ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है तो हमारे में अवेयरनेस आती है, जागृति आती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें रियलाइज होता है, मैं समझती हूं कि आप सभी भी उस अनुभूति से पास हो रहे होंगे और सोचते होंगे कि हाँ हम अब जाकर के जल्दी उठेंगे, देरी से सोते रहते हैं, अब हम जल्दी उठेंगे और शांति से चलेंगे, प्यार से चलेंगे, सबको सुख देंगे, बुराइयां व्यसन छोड़ेंगे। जब हम ये श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लक्ष्य लेते हैं, तो फिर वहां के वातावरण में युद्ध चलेगा, है ना। कोई कहेंगे ओहो तुम तो बहुत योगी बन गया वहां जाके, तुमको भी ब्रह्मा कुमारी का जादू लग गया क्या, हा? देखते हैं तुम कितना योगी बनता है, है ना। लोग भाग भाग की कमेंट्स करेंगे, आपके मन में भी युद्ध चलेगा, अरे भाई आज थक गया हूं सो जाता। फिर होगा कि नहीं जल्दी उठना चाहिए, फिर आप उठेंगे, शांति से चलना है, प्यार से काम करना है, एक बार दो बार चार बार, फिर कोई अति परेशान करेगा तो आप गुस्से में आ जाए। तो ये युद्ध है, हमें होता है नहीं करना चाहिए और परिस्थितियां ऐसी आती है। तो वहां जितना ज्ञान और योग नित्य हम अभ्यास में लाएंगे तो रोज जो आपको शुरू में बताया ना ज्ञान मुरली शब्द आपने उद्घाटन में सुना था, वो महावाक्य भगवान ने ब्रह्मा मुख से जो उच्चारण किए उसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं। और 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसके बाद वो कोर्स रिवाइज होता है, वो ज्ञान मुरली रिवाइज होती है। तो वो महावाक्य रोज हम सुनते हैं जिसमें प्रैक्टिकल गाइडेंस है। यहां तो आपने ज्ञान सुना पर अब दुनिया में रहते हुए कैसे आचरण में लाना है, खुद समझना है, दूसरों को समझाना है, उसमें क्या विघ्न आएंगे, हमारे बुरे संस्कार कैसे हमें परेशान करेंगे, वहां हमें कैसे ज्ञान को अप्लाई करना है, वो सारा प्रैक्टिकल गाइडेंस ज्ञान मुरली में होता है। तो रोज वो महावाक्य सुनने से अटेंशन रहता है कि अब हमारा लक्ष्य क्या है, अब हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। अब तक तो हम जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, तो हम गलत करते रहे, अब हम समझते हैं, जानते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो वो समझ मिलेगी, वो अटेंशन मिलेगा, तो इससे हमारा पुरुषार्थ लाइफ व्यवहार यथार्थ ट्रैक पर चलेगा। और रोज मेडिटेशन करने से वो विल पावर डेवलप होगा, उसकी याद से आत्मा शक्तिशाली बनेगी, ताकि जो करना चाहिए वो ही हम करें, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं ही करें, उसको योगी कहते हैं। योगी कोई और चीज नहीं है, हा? योगी किसको कहते हैं कि जो करना चाहिए सही अपना वो ही करें, जो नहीं करना चाहिए विवेक के अनुसार वो न करें, ऐसा जिसके अंदर विल पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, अंदर का संयम है, उसको कहते हैं योगी जीवन। तो कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं, कोई प्रवृत्ति छोड़ने की बात नहीं, कोई संबंध छोड़ने की बात नहीं, बुराई छोड़ने की बात है, गफलत को छोड़ने की बात है। हम भाई बहने तो इसलिए समर्पित हुए, आप सोचेंगे कि आप लोग क्यों समर्पित हुए हैं, है ना। तो हम इस ज्ञान के कनेक्शन में जब आए तो हम कुमारी हैं, तो अभी हम किसी से जुड़े नहीं थे, है ना, और हमें वो सत्य ज्ञान मिल गया। तो जब कोई एक व्यक्ति से जुड़ते हैं तो एक सीमित परिवार की सेवा हम कर सकते हैं। अब कोई तो जीवन अपना समर्पण करेगा तब तो कार्य परमात्मा का चलेगा, इसलिए हम फ्री थे, कहीं तो जुड़ना ही था, तो भगवान से जुड़े ताकि उसके बेहद परिवार की सेवा कर सके, है ना। तो हम भी भगवान से अब जुड़ गए हैं, है ना, और उसके परिवार उसकी सेवा करते हैं। बाकी जो ऑलरेडी मैरिड हैं, गृहस्थ में रहने वाले हैं, उन सब भाई बहनों के लिए बाबा यही लक्ष्य देते हैं कि आपको कमल पुष्प बनना है। कमल पुष्प कीचड़ में उगता है फिर भी कीचड़ से अलिप्त रहता है, ऐसे इस दुनिया में ही रहना है, उन्हीं संबंधों में, उसी परिवार में, उसी नौकरी धंधे में, लेकिन उसमें रहते हुए हमें बुराइयों से, विकारों से, अपवित्रता से अलिप्त रहना है, तो हम अपना जीवन पवित्र योगी बना सकते हैं। और यही कारण है कि देवी देवताओं को कमल पुष्प पर दिखाते हैं, देखा है आपने, कमलासिनी कहते हैं, है ना, श्री लक्ष्मी को क्या कहते हैं, कमला सिनी, कमला भी कहते हैं। और कमल फूल पर दिखाते, हर देवी देवता के हाथ में कमल फूल, और उनकी हर कर्मेंद्रिय की तुलना कमल पुष्प से करते। हस्त कमल, नयन कमल, चरण कमल, ले आइए दादी को, है ना, मुख कमल, देवी देवताओं की हर कर्मेंद्रिय की तुलना कमल पुष्प से करते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनकी कर्मेंद्रियां कमल के समान विकारों से अलिप्त थी। वे देखते थे लेकिन दृष्टि शुद्ध थी, कर्म करते थे पर श्रेष्ठ कर्म, बोलते थे लेकिन सत्वचन, शुभ वचन। तो हर कर्मेंद्रिय कमल पुष्प समान हमारी निर्विकारी बनती जाएगी तो हम ही देवी देवता हो जाएंगे और भारत स्वर्ग बन जाएगा।